इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं ही अल्लाह हूं। अब ये है अगला तारुफ अल्लाह ताला का। अब मैं अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई इलाह नहीं सिवाय मेरे। अच्छा, अब आप यहां पे देखें कि वही जो हम ला इलाहा इल्ला कहते हैं उसी को थोड़ा सा, ये है वो चीज जो इतनी कदीम जमाने से लेकर आज तक यही कलिमा है। अब आप सोचेंगे ये ज्यूज का अलग रिलीजन है, उनका अलग रिलीजन है, बेस सब की एक है, वो अलग बात है, इन्होंने अब चेंज कर ली है, कलमा तो उनका भी यही है, उनको भी यही बात दी गई कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हमारा कोई कलमा स्पेसिफिक नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये कोई नया दीन नहीं आ गया कि हाँ शरीयतें मुख्तलिफ आई, किसी में एक सजा होगी, किसी में दूसरी होगी, किसी में एक चीज खाने की हलाल की गई होगी, किसी में नहीं हलाल की गई उनके उनके किसी गुनाहों की वजह से, मगर जो बेस है ना वो सबकी ला इलाहा इल्लल्लाह है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, चाहे ज्यूज हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी इल्हामी मजाहिब हो। फाबुदनी, बस इबादत करो मेरी। इस ला इलाहा इल्लल्लाह की डिमांड है कि अब इसका सबूत तुम कैसे दोगे, सिर्फ ये कहकर नहीं कि अब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, अब इबादत करके दिखाओ ना। अरे इबादत का मतलब क्या है? क्या सिर्फ रोजा नमाज इबादत है? नहीं, इबादत वाली जिंदगी, गुलामी वाली जिंदगी, क्या हम किसी के गुलाम बन सकते? नहीं, हम तो गुलाम बन ही नहीं सकते, लो हम किसी को गुलामी करेंगे, हम तो खुद सबसे बड़ी चीज है, हम कहां गुलामियां करने के लिए, एरोगेंस है ना हमारे अंदर, हम क्यों गुलामी करें, इबादत है ही गुलामी। और गुलामी जब अल्लाह की इंसान करता है ना, तो फिर मर्जियां नहीं चलती अपनी कि मेरी मर्जी ऐसी, मेरा मूड ऐसा, मेरा दिल ऐसा। इबादत करने का मतलब ये है अब बस गुलामी करो अल्लाह की। इंसान ना इंसानों से जब मोहब्बत करते हैं ना, कि वो इतने शायरियां इसके ऊपर, और मेरा महबूब और ये, और मैं तेरा गुलाम, और मैं तेरा ही, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, इंसानों की ऐसी गुलामी पे उतर आते हैं, और हम हर रोज कहते हैं या कनाबुदु अल्लाह, हम तेरा सिर्फ तेरी गुलामी करते हैं, और जिंदगी में कोई गुलामी नहीं, क्योंकि कोई इबादत के लायक ही नहीं है मेरे सिवा, इसलिए तुम मेरी इबादत करो, इसलिए तुम्हें गुलामी करनी है तो मेरी करनी है, या का सिर्फ तेरी, सिर्फ तेरी, इंसानों की गुलामियों में ना पड़ो, अल्लाह की गुलामी करो। तुमने जिंदगी कैसे गुजारनी है वो अल्लाह बताएगा, ये डिक्टेशन तुम्हें कोई और नहीं देगा, अल्लाह देगा। इतात वाली जिंदगी है गुलामी वाली जिंदगी, इतात, ओबीडियंस, सरेंडर कर देना, वो है इबादत। वाकिमिस्सला, और कायम करो नमाज, हमने देखा नमाज का तो कितने उन पैगंबरों को भी जिक्र आ रहा है, हमने तो नमाज को कुछ समझा ही नहीं। देखिए हम ईसा अलैहिस्सलाम भी कह रहे हैं, यहया अलैहिस्सलाम भी कह रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी कह रहे हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो अपनी ही दुआ है जो हम नमाज में पढ़ते, रब्बी जालनी मुकीमस सलात, तो ये तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मांग रहे हैं, और उनको भी अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को फरमा रहे हैं कि कायम करो नमाज, ली दिक्री, किस लिए कायम करनी है नमाज, कायम करने में सारी चीजें आ गई, वजू से लेकर सारी शराइत नमाज की, सल्ली नहीं फरमाया, कायम करो, कुरान में कायम करने का जिक्र आता है, और कायम करने में फिर ये सब चीज कवर होती है। अब आप कहें वुजू तो कायम करने में नहीं, नहीं वो भी उसका हिस्सा है ना नमाज का, जो चीजें नमाज के लिए जरूरी हैं वो जो सारी उसके अंदर आ गई अकीमिस्सलाह में, ठीक है। और क्यों करनी है नमाज कायम, व्हाट्स द पर्पस, ली दिक्री, मेरे जिक्र के लिए, मेरी याद के लिए, मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ो, अल्लाहु अकबर। और हमारी सारी नमाज में हर कोई हमें याद आता है, हर कोई, शॉपिंग से लेकर, कुकिंग से लेकर, लोगों की बातों से लेकर, लेकिन एक नहीं याद आता तो अल्लाह नहीं याद आता, तो फिर जिक्र के लिए तो हुई ही ना, क्या उसमें हमने जिक्र किया अल्लाह का, अल्लाहु अकबर। तो फरमाया मेरी याद के लिए हम अपनी नमाजों को चेक करें, इनमें अल्लाह की याद भी है या नहीं। मैं आप मसलन आपको कहूँ, आप गाड़ी चला के आए मेरे घर आने के लिए, आप गाड़ी लें मेरे घर आने के लिए, अब आप पूरी दुनिया में लेके गाड़ी घूम रही, मेरे घर ही नहीं आई तो फायदा क्या हुआ, पर्पस क्या उसका पूरा हुआ, नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज पढ़नी इसलिए है, किसी और मकसद के लिए नहीं, इसलिए कि तुम मुझे याद करो, क्योंकि नमाज सारी की सारी अल्लाह की याद है। आप अल्लाह को याद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इन सात आतिया तुम, याद रखना। देखे सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ईमान बिल्लाह के बाद, तौहीद के बाद और नमाज के जिक्र के बाद जो अगली बात फरमाई वो क्या है, याद रखना। क्या कि क़यामत आने वाली है। इन नसात आदियत, उन क़यामत आने वाली है। हम कहें कहाँ पे आने वाली हैं, उसकी तो निशानियाँ ही पूरी नहीं हुई। ओ अगर मौत आ गई, शाम तक मौत आ जाती, क़यामत तो शुरू हो गई मेरी और आपकी। हमें क्या इससे कि भाई कब आएगी, हज़ारों साल बाद आए चाहे जब मर्जी आए, हमारी तो भाई क़यामत शुरू हो गई। हमें क्या जो तुर्बत में मेले लगेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे, इस तरह से है ना कुछ। हमें क्या फिर जो मर्जी होता रहे, हम तो ज़मीन के नीचे अपने हिसाब किताब देने में क्या क्या हमारे हाल हो रहे हैं। हिसाब किताब तो शुरू हो जाना है, मुनकर नकी ने तो उसी वक्त आ जाना है, अगली दुनिया तो नज़र आनी शुरू हो जाएगी, ख़त्म ये किस्सा तो ख़त्म। तो ये तो आने वाली है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया ना इन्नहुम यरौनहु बाईदा, वो इसको देखते हैं दूर, व नराहु करीब, और हम कहते हैं कि बड़ी करीब है। आप क्या कहते हैं, दूर या करीब? कयामत आने वाली है, वो साथ, वो घड़ी, वो फिक्स टाइम आने वाला है। अकादु उख्फीहा, करीब है कि मैं छुपा लूँ उसको। अल्लाह ताला फरमाते हैं बहुत ये चांस है था कि मैं उसको छुपा लूँ। अल्लाह ताला कयामत का किसी को बताता ही ना, किसी को ना इसका इल्म होता। अभी भी दिन महीना तारीख तो किसी की भी नहीं इल्म, मगर अल्लाह ताला ने बाज निशानियां बता दी। मगर अल्लाह करीब था कि अल्लाह ताला बताता ही ना, किसी को भी ना पता चलता कि कयामत एक आनी है और एक हिसाब किताब ने। व्हाट इफ, सोचिए ना जरा कि अगर ऐसा होता अल्लाह हमें बताता ही ना, हम ऐसे ही जिंदगी गुजारते रहते। क्यों ये फरमाया, इसलिए 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 कि अल्लाह के तुम्हारे ऊपर इतने एहसानात हैं कि वो कयामत का नहीं भी बताता तो भी तुम्हें उसी की गुलामी करनी थी, तो भी तुम उसी के आगे झुके रहते, तो भी तुम उसके फरमाबरदार बने रहते। डजंट मैटर, अगर कयामत नहीं भी आनी होती तो क्या उसके एहसानात इतने नहीं थे तुम पे कि तुम उसके बंदे बन के रहते? लेकिन उसने कयामत का इल्म दे दिया। क्यों? ली तो जजा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसहा, ताकि बदला दिया जाए हर शख्स को उसके मुताबिक जो उसने अमल किया, ताकि हर नफ्स को यानी अपने अपने मुताबिक उसके जो मेहनत करे। अल्लाह ने छुपा रखा था, अल्लाह ताला ने फिर इसका इल्म इसलिए दिया, इतना ये बता दिया, उसकी निशानियां बता दी कयामत आएगी, ताकि लोग मेहनत करें। वरना तो लोग, अगर पता ही ना, तो अभी पता होने के बावजूद ये हाल है, और अगर पता ही ना होता तो फिर क्या हाल होते। क्योंकि हम में से बाज़ लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि कयामत का दिन आना है, इसलिए नहीं कर रहे कि अल्लाह तेरे मेरे ऊपर इतने एहसान आते, मैं सर उठाऊं तो उठाऊं कैसे, मैं तो इतने तेरे एहसान तले दबी हूं कि या रब मेरी तो इतनी भी जरूरत नहीं मैं नजर उठा सकूं, मैं कुछ चू कर सकूं। नौकर भी कहता है, एक घर में काम किया तो कहता है इस घर की मैं नमक हरामी नहीं कर सकता, इस घर का नमक खाया हुआ मैंने। पुराने नौकर जब होते थे, तुम तो सारा वक्त अल्लाह की खाते हो, अल्लाह के दिया हुआ पहनते हो, अल्लाह की दीवी आंखों से देखते हो, उसकी दीवी जिंदगी, उसकी दीवी सांसें ले रहे हो, हाँ फिर तुम नमक हरामी करो। ये उसने करीब था कि मैं छुपा लूं। और ये भी है कि अल्लाह ने इसका इल्म, जो उसकी तारीख और वो छुपा रखा है, ठीक है, छुपा रखा है ताकि इंसान मेहनत करे, मेहनत करे उसके मुताबिक, जो जो इंसान उसके मुताबिक उसको फिर बदला दिया जाएगा। यानी इसके अंदर मसलहत ये है, इसको दिन, इसका टाइम, इसका महीना, जो भी वक्त है, वो छुपाने में हिकमत ही है ताकि इंसान मेहनत करता रहे। वरना तो इंसानों ने कहना था, जा चलो फ्राइडे को आनी है, थर्सडे को मैं माफ़ी मांग के सही हो जाऊंगी, अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो मज़े करो। जैसे हम कहते हैं ना, अभी क्या ज़रूरत है ठीक होने की, अभी तो क़यामत की निशानियाँ ही पूरी नहीं, नहीं हमें अभी भी इतने रिलैक्स्ड हैं। तो अगर अल्लाह ताला इल्म बता देता, मौत का बता देता, या किसी के अपनी इंडिविजुअल क़यामत का या पूरी जहानों की क़यामत का इल्म बता देता, तो फिर तो पहले से कोई मेहनत ही ना करता। अल्लाह, तो चूंकि क़यामत की डेट नहीं बताई गई, ये अल्लाह ताला ने इल्म छुपा दिया, तो इसलिए अब ये सबको मेहनत करनी है। और दूसरा तो मैंने आपको मतलब बता ही दिया कि किसी को पता ही ना होता कि क़यामत भी आएगी, तो फिर अल्लाह चाहता था तमाम लोगों को अभी भी ना पता होता, वो एकदम वहाँ पे जाके सरप्राइज मिलता, ओ अब हिसाब दो, अरे फिर क्या होता हमारा। सोचें अगर अल्लाह ने ना बताया होता और हम मर जाएं और फिर उठें और हमारे सामने वो दिन आ जाए और कुछ नहीं पता, और अब कह जाए अब तुम्हारा सारा हिसाब किताब होगा, तो फिर कितनी घबराहट होती। अभी तो हमें पता भी है ना, तो फिर भी हमारी कमियां, फिर भी हमारे, हम अपने आप को सही नहीं कर पा रहे। फला या सुद्दन नकान, हाँ ये अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस ना रोके तुझे इससे, किससे, अनहा की ज़मीर किस तरफ जा रही है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम पहली बात की तरफ लें, पिछली आयत में पहली बात क्या हुई, नमाज की, तो तुझे ना रोके तुझको नमाज से, कौन ना रोके, मन ला यूमिनु बिहा, जो इस पे ईमान नहीं रखता, जो खुद नहीं नमाज पढ़ता, जो खुद नहीं नमाज को कुछ समझता, वो तुझे भी ना कहीं रोक दे नमाज से, वह तबाह हवा हो, और वो खुद अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगा हुआ है कि मेरी मर्जी में जो मर्जी करूं मैं ये करूं, और उसको ना नमाजों की कोई परवाह ना किसी चीज़ की, तो फतरत, वरना तू हलाक हो जाएगा अगर तू ऐसे बंदे के पीछे लगा। अच्छा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को पहले से ही वॉर्न किया जा रहा है कि ऐसे बेईमानों के पीछे नहीं लगना, जो जो खुद ही, जिनको अपनी परवाह नहीं है, जिनको अपनी नमाजों की कोई फिक्र नहीं है। अब हमें, देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ने तो नहीं लगना था, वो तो पैगंबर थे, हमें सबको बताया जा रहा है तुम ना कहीं लग जाना ऐसे लोगों के पीछे। वो कहेंगे आप, तुम इधर आओ, इधर आके बैठो, बातें करते हैं, नमाज को छोड़ो ना, उनको खुद नमाजों की परवाह है। और या फिर वो कहते हैं नमाजों से क्या होता है, हम वैसे ही इतने नेक हैं, नमाजों से क्या फ़र्क पड़ता है। ये लोग तुम्हें भी कहीं नमाज से ना रोक दें, ये खुद अपनी ख्वाहिशात के पीछे अंधे हुए हैं। ख्वाहिशात क्या होती हैं, जैसे सोना, खाना पीना, चीज़ें दुनियावी, ये शॉपिंग, वो चीज़ें, वो इधर उधर के ये सब चीज़ें, पैसा भी इसमें आ गया, और जितनी भी ख्वाहिशात हैं जिनके पीछे इंसान पड़ा रहता है, दुनियावी चीज़ें, ये कहीं नमाज ना छुड़वा दें, उसने अपनी तो छोड़ी भी, तुम्हारी भी ना छुड़वा दे, वरना तू हलाक हो जाएगा। तो देखो मैंने तुम्हें चुना है, तो तुम्हें कोई नमाज से गाफिल ना करे। अच्छा, एक तो यह हा की जमीर अगर नमाज की तरफ ली जाए, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, हा की जमीर अगर कयामत की तैयारी की तरफ ली जाए, क्योंकि पहले सा का जिक्र आया, फला या सुदन नकान हा, तुझे ना रोक दे इस क़यामत की तैयारी से, तुझे वो लोग ना रोक दें जो खुद भी ईमान नहीं रखते क़यामत पे। देखिए ना, जो कोई शख्स खुद ही नहीं ईमान रख रहा, खुद ही वो गाफिल है, खुद ही वो दुनिया के धंधों में ऐसे पड़ा हुआ जानवरों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं कि ना दिन का पता ना रात का पता, बस भाग रहे हैं भाग रहे हैं, मेरा ये दिल चाहा तो मेरा, कई दफ़ा लोगों से पूछे ना क्यों ये कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, हमें पता नहीं, जस्ट आई वॉन्ट टू डू इट, बस दैट्स इट। यानी मेरा मूड है या मेरा दिल चाह रहा है या मेरा, दैट्स इट। कोई उसके पीछे ये नहीं है कि कोई, यानी कोई मकसद हो, कोई वजह नहीं, बस जहां को मुंह उठाया उधर को चल पड़े। तो ऐसा ना हो कि ऐसे लोग तुम्हें गाफिल कर दें। और ये हम सब के लिए इतना बड़ा सबक है, क्योंकि जब हम ऐसी कंपनी में रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो कि खुद क़यामत से तो बिल्कुल गाफिल हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसे चौपाइयों वाली गुजर रही है। अल्लाह ताला ने तो फरमाया इक़तरब लिन्नास हिसाबुहुम, तुम्हारे तो हिसाब का वक्त करीब आ गया, बहुत करीब आ गया, इक़तरब में बहुत करीब है, बहुत करीब आ गया, क़यामत आ गई बस, यानी आतिया में ये है कि बस अपनी मंजिल पे जो चीज पहुंचने वाली हो, इतनी करीब आ गई हो, पहुंचने वाली है बस, और इंसान है कि गाफिल पड़े हुए। अब जब वो गाफिल होते हैं तो उनके साथ रहते रहते हम भी गाफिल हो जाते हैं कि जब इनको नहीं परवाह तो फिर हमें क्या परवाह, हमें कुछ ज्यादा ही पता नहीं फिक्र पड़े, तो तुम्हें क्या इतना हो गया, कुछ नहीं होता, ये बस मौलवियों की बातें, ये फलानों की बातें, और आप भी रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, तो तुम्हें ये डिस्ट्रैक्ट ना कर दे, तुम्हें ये रास्ते, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो उसे हटा ना दे, आखिरत की तैयारी से गाफिल ना करते। देखो कितनी बड़ी चीज़ है आखिरत की तैयारी। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये ना हो कि इन लोगों के पीछे लग के तुम भी अपना बेड़ा गर्क कर दो, फतरदा तुम हलाक हो जाओ, ये ना वो तैयारी करेंगे ना तुम्हें करने देंगे। और ये ऐसा चीज़ है कि इंसान एक दफ़ा इस रास्ते से एग्जिट ले लेना अगर, तो बस फिर फिसलन ही फिसलन है, फिर नीचे ही नीचे, तरदा है ना ऊपर से नीचे आना, बस फिर स्लोप है, फिर नीचे ही गिरे हो गए जाके, फिर नहीं कहीं रुकना। फिर इंसान जाहिर है ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, कोई फिर इंसान की लिमिट थोड़ी होती है, फिर तो वो बस गिरता ही चला जाता है। तो तुम्हारी मंजिल तो ऊपर है, तुमने तो आगे बढ़ने की ऊपर की तरफ की तैयारी करो। आज भी अगर आपने सब को, दुनिया को या जिसको आप कहते हैं लोग, लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया ना, तो ज़्यादा इंसानियत गफलत में पड़ी हुई है। ज़्यादा इंसानियत वो है जो या तो ईमान ही नहीं रखती क़यामत पे, या ज़ुबानी तो ईमान रखती है मगर अमल में उनके नज़र आता है कि उनका कोई ईमान नहीं है हिसाब किताब पे, आखरत पे। और जब उनको हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो हम भी गफलत वाली ज़िंदगी गुजारने लगते, ऐसी ज़िंदगी जैसे कभी जीना दोबारा है ही नहीं, उठना ही नहीं, बस मन मानियाँ करो, मौज करो, खाओ पियो, मज़ा करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, फिर हम वैसे बन जाते हैं। तो बताया जा रहा है कि चैलेंजेस तो आएंगे, रुकावटें तो आएंगी, वो वक्त तो आएगा, तुम्हारे इर्द गिर्द वाले भी कहेंगे तुम बड़ी पागल हो गई हो, तुमने क्या कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, तुम तो ऐसी हो गई हो, तुम्हें इतनी फिक्र तुम्हें हो गई है, तुम बस पता नहीं किस तरफ लग गई हो। तो इस तरह की बातें करके ना आपको भी हिलाने की कोशिश करेंगे, तो आपको भी शेक करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त अपनी जगह से नहीं हिलना, इस रास्ते को नहीं छोड़ना, मत उस रास्ते पे जाओ जो सिर्फ ख्वाहिशात के पीछे दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, ख्वाहिशात के बंदे हैं, इन्हीं ख्वाहिशात के पीछे मर जाएंगे एक दिन, और ख्वाहिशात उनकी कभी ख़त्म नहीं होती। आप भी उस तरफ चलेंगे तो उसी डगर पे चलते चलते आपका भी यही ट्रैक हो जाएगा, गाफिल हो जाओगे आखरत से। ये मैं नहीं कह रही, ये आपका रब आपको बता रहा है कि किधर से कौन सी चीज़ आपको गाफिल कर सकती है, कौन बंदा है जो आपको ट्रैक से हटा सकता है, मत उसको फॉलो करो। बी अवेयर ऐसे लोगों से, ऐसी कंपनी से, ऐसी जगहों पे बैठने से। क्या आपको अभी तक खुद नहीं पता चलता कि कौन सी जगह है जो मुझे गाफिल कर देती है? किसी को बताने की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो फिर हम वो कंपनीज क्यों नहीं छोड़ देते? क्या ज़रूरी है हमें ऐसे लोगों के साथ रहना कि जहाँ से हम आके हम कहते हैं वो पता नहीं मैं क्यों कुरान के अंदर लग गई हूँ, ये इनको देखो कितने मज़े कर रही हैं, आज इधर फन है, कल उधर मज़ा है, उधर पार्टी है, उधर वो है, आज ये शॉपिंग है, आज वहाँ जा रहे हैं, आज मज़े कर रहे हैं। तो फतरदा तुम हलाक हो जाओगे, वरना इसी ट्रैक पे चलो, क़यामत की तैयारी करो। वो तो हंसेंगे आपके ऊपर अगर आपने ये बात ही उनको बता दी कि हम तैयारी कर रहे हैं अपने आगे आगे की तैयारी, हंसेंगे और आपको पागल कहेंगे। अल्लाहु अकबर। मगर आपका रब जो जिससे ज़्यादा आपसे कोई मोहब्बत नहीं करता, वो आपको ये बात बता रहा है, डाइवर्ट ना हो जाना इनकी बातों में आके, ये रास्ता ना छोड़ देना, तुम लगे रहो। وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. اب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یہ ساری سبق سکھا کے نا, یہ تعلیم ہے, پہلا سبق دیکھیں, فرسٹ سبق ہی کیا ہے. اچھا اگر ہم اور نہیں کچھ بات یاد رکھ سکتے, جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی کلاس دی ہے وہ تو کم از کم یاد کر لیں. فرسٹ کلاس موسیٰ علیہ السلام کی, فرسٹ کلاس میں کیا کیا باتیں ہوئیں, آگے تو اور بات ہے, مگر یہ ہیں جو سبق ہے جو ان کو دیا گیا, اس کو یاد کر لیں, نہیں تو اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں. کیا سبق سکھایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو, ہم سب کے لیے وہ. تو یہ تو موسیٰ تمہارے یہ ہاتھ میں کیا ہے, جب کسی کو نام لے کے اس طرح سے پکارا جائے نا, تو اصل میں اس کو کمفرٹیبل کرنا ہوتا ہے, اس کو وہ کرنا ہوتا ہے. اب میں آپ کو کہوں کہ کیا حال ہے آپ کا یا عائشہ, تو ایک پہلے کیا حال ہے کہہ دیا, اس سے آپ تھوڑا سا بات بھی سمجھ آ گئی کہ کیا بات کر رہی ہیں, اس کے بعد نام لیا. اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے, یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے پوچھا, اللہ تعالیٰ کو تو جانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو یہ اویئرنیس دینے کے لیے کہ ان کو شعور ہو جائے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے, کیونکہ اس کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دینا تھا. قال ہی عصایا, فرمایا یہ میری لاٹھی ہے. اب اتنا کہنا کافی تھا, اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا اس کا جواب دے دیا, لیکن موسیٰ علیہ السلام اس پہ نہیں رکے. اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی, یہ جو میرے پاس ہے میرا عصا, اس سے میں سہارا لیتا ہوں اور اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. ولی فیہا معارب اخرى, اور اس میں اور بھی بڑے میرے فائدے ہیں, بڑی میری اور ضرورت کی چیزیں پوری ہوتی ہیں اس سے. اب یہ ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ نے پوچھی ہی نہیں تھی, موسیٰ علیہ السلام کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اب پتہ چل چکا ہے کہ وہ بات کس سے کر رہے ہیں. آپ کو کسی سے بڑی محبت ہو اور آج اس کے ساتھ آپ کے فون پہ بات ہو رہی ہو, فون لائن آپ کی آج مل گئی اور اس نے فون اٹھا لیا, اب کیا دل چاہے گا؟ دل چاہے گا کبھی فون بند ہی نہ ہو, باتیں ہوتی رہیں. وہ کیا لذت ہوگی جو رب کائنات سے بات کرنے کی ہوگی, ایک ذرہ ہے انسان اور کہاں وہ عالمین کا رب, اس کے ساتھ بات کرنا کیا آنر ہے اور کیا لذت ہے اس کے اندر. اب دل ان کا نہیں چاہ رہا کہ بات ختم ہو, لیکن اب اتنی بھی بات نہ لمبی ہو جائے کہ بے ادبی ہو جائے. تو اب یہاں تک پھر فرمایا کہ بس فائدے ہیں بہت سارے, مگر دیکھیں بات کو لمبا کر دیا. اب کنفرم ہو گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود بھی کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہی ہے, کچھ اور نہیں ہے. قال القیہا یا موسیٰ, فرمایا اے موسیٰ اس کو ڈال دو, ڈراپ اٹ. کیا فرمایا؟ ڈراپ اٹ. اچھا موسیٰ علیہ السلام ابھی اس کے اتنے فائدے بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈراپ اٹ. اب دیکھیں جیسے آپ خود سوچیں کہ آپ کسی چیز کے بڑا سمجھتی ہوں کہ اس کے بڑے فوائد, یہ میں کام کروں اس طرح تو اس میں مجھے یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے, اور اللہ کی طرف سے حکم آ جائے چھوڑ دو. اب ہم کتنی تیزی سے اس کو چھوڑتے ہیں, یا پھر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اس میں تو مجھے بہت فائدے نظر آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہا ہوگا لیکن میں تو نہیں یہ کام چھوڑ سکتی. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت دیکھیں ذرا آپ, ان کی فرما برداری دیکھیں. فالقاہا, اگلا سوال ہی نہیں ہے, اللہ کیوں میرے تو اس میں اتنے فائدے ہیں, میں کیوں اس کو چھوڑ دوں, میں کیوں اس کو پھینک دوں, ابھی تو میں بتا کے ہٹاؤں اتنے فائدے. سبحان اللہ, ایسے ہی نہیں اللہ پھر چن لیتا نا, ہم تو سوچ سوچ میں ہی صدیاں گزار دیتے ہیں کہ اس سے مشورہ کر لیں, پہلے اس سے پوچھ لیں, پہلے وہ کیا کہتی ہے اس بارے میں, فلانی میری فرینڈ کا کیا خیالات ہیں اس بارے میں, ذرا فون اٹھا کے اسے کہہ دوں آج سے میں یہ کام شروع کر دوں یا فلاں کام چھوڑ دوں. ڈال دیا فوراً. اچھا جوں ہی ڈالا, فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى, تو فوراً وہ ایک سانپ بن گیا اور تیزی سے دوڑنے لگا. اب آپ خود سوچیں ایسے سانپ جو ایک دم تیزی سے دوڑ بھی رہا ہو کتنی ہیبت ہوتی ہے اس کی, اور دوسری جگہ پہ آیا وہ جان, یعنی وہ بھی ایک سانپ ہوتا ہے جو تیز ہو, اور ایک اور جگہ آیا ثعبان, وہ اژدہا جس کو ہم کہیں گے, وہ اتنا بڑا سانپ تھا اور پھر وہ تیز بھی دوڑ رہا ہے. قال خذھا, اب اللہ دوسری جگہ آتا ہے سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام تو پیٹ پھیر کے بھاگے, یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں, ہمارے ہاں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے, خذھا اس کو پکڑ لو. अब देखिए, पहले जब वो अच्छी भली चीज थी, फायदे की थी, नजर आ रही और सारा कुछ था, उस वक्त फरमाया छोड़ दो। अब जब ये नुकसान की नजर आ रही है तो फरमाया पकड़ लो इसको। सुभान अल्लाह, कितना ये मुश्किल हुक्म नहीं है क्या? बहुत मुश्किल हुक्म है, क्योंकि अच्छा भला अपनी नजरों से देख रहे हैं कि ये सांप है, और सांप की अपनी दहशत भी होती है, फिर वैसे भी जान का खतरा, फिर इंसान कैसे पकड़े उसको। लेकिन ये काम वही कर सकता है जो अपने रब पे ट्रस्ट करता हो, उसको भरोसा हो, उसको कॉन्फिडेंस हो कि मेरे रब ने जो हुक्म दिया इसमें खैर ही खैर है, मैंने ये कुरान में पढ़ लिया, बस अब मुझे किसी से मशवरे की जरूरत नहीं, अम्मी से पूछने की जरूरत नहीं, सहेली को कॉल करने की जरूरत नहीं, हस्बैंड की इजाजत लेने की जरूरत नहीं, मेरे रब ने कहा, समय आना, मैंने सुन लिया, हमने अता आना, हमने मान लिया, बस। अल्लाह ताला ने फरमाया इसको पकड़ लो, ये जो सांप है, कोई कोई खूबसूरत फूल नहीं था जिसको पकड़ने को कह दिया, बहुत खतरनाक, इतना डरावना, मगर पकड़ो इसको। और फिर बार बार कहने की जरूरत नहीं होती हुई, जैसे कि हमें अपने बच्चों को कहने की जरूरत है, पकड़ो ना तुम ये, उठाओ यहां से चीजें, उठा 10 दफा कहते हैं तो फिर वो 1 दफा करेंगे, 10 दफा नहीं कहना पड़ा, अल्लाह ताला ने बस फरमाया इसको पकड़ लो और डरो नहीं। आप देखें ये इतनी खतरनाक चीज है, मगर अल्लाह ताला ने मूसा को दिखा दिया कि मूसा किसी चीज में भी कोई शर नहीं जब तक अल्लाह ना उसके अंदर शर पैदा कर दे तुम्हारे लिए, और किसी चीज में खैर नहीं जब तक कि अल्लाह ना उसमें तुम्हारे लिए खैर पैदा कर दे। आसा अल्लाह चाहे तो वही सांप बन जाए, वही आसा जो तुम्हारे लिए फायदेमंद था वही शर बन जाए, और वही जो चीज तुम्हें शर नजर आ रही है इस कदर शर कि वो सांप की सूरत है, आंखें देख रही हैं, आंखें कह रही हैं ये तुझे काट लेगा, तू मर जाएगा, और अल्लाह ताला का हुक्म है कि उठा लो, करो ये काम, इसमें मुझे मौत नजर आ रही है लेकिन करो ये काम, तो मैंने कर लिया क्योंकि मेरे रब का हुक्म है। तो वो देखो जब उसको पकड़ा तो वो वापस लाठी बन गया, वो वापस फायदे की चीज बन गया। तुम्हारी जो तुम अपनी नजर से देखते हो ना, तुम्हारे देखने से नहीं होता कि ये चीज खैर है या ये चीज शर है, और ये चीज ऐसे है और ये चीज ऐसे है, और मैं अपनी लॉजिक्स लड़ाऊं और मैं अपना जहन लड़ाऊं, तुम्हारे देखने से नहीं, अल्लाह चाहेगा तो शर में भी खैर पैदा कर देगा, अल्लाह चाहेगा तो खैर को भी शर बना देगा, अल्लाह चाहेगा तो इसी खतरनाक सांप का जिसमें जहर होता है उसी को तुम हाथ में पकड़ोगे, यही मौजजा है, यही तुम्हारे काम आने वाली चीज है, यही तुम्हारे लिए आगे भी खैर का बायस बनेगा। कितना बड़ा लेसन है इसके अंदर ये, सनुईदु हासीरतहल उला, अल्लाह ताला ने फरमाया हम करीब हम इसको लौटा देंगे इसकी पहली हालत पर। तो ये हमें अल्लाह के ऊपर ऐसा ट्रस्ट कायम करने की जरूरत है। अब यहां पे ये बात को नहीं याद रखने की इतनी बात के वो अच्छा सांप बना, फिर उसके बाद वो लाठी बना और फिर हम आगे चल पड़े, बात जो हमें याद करने की जरूरत है, जो हमें जहन में बिठाने की जरूरत है कि अल्लाह कह दे ये कर लो तो मैंने कर लेना है, चाहे मुझे मुझे सांप नजर आ रहा है, अल्लाह कह दे ये छोड़ दो, ये हुक्म दे दे कि ये छोड़ दो तो मैंने छोड़ देना है, चाहे मुझे इसमें खैर ही खैर नजर आ रही है, बस इतनी सी बात भी हमने इसे ले ली, फायदा ही फायदा। फिर अगला मौजा अल्लाह तला ने दिया, बहुत भूमियादा का इलाज है ना है तखरुज बैदा अमीन गैरी सूर, देखो अपना हाथ मिलाओ पहलू में बगल में, सफेद रोशन निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के, यानी ऐसे नहीं होगा कोई बीमारी तुम्हें हो गई इसकी वजह से, बल्कि ग्लोइंग होगा, क्योंकि इंसान एकदम देखे अपने हाथ को ऐसे डाल के इस तरह निकाल के तो घबरा जाए कि ये क्या हो गया, नहीं कोई बीमारी वगैरह नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से मौजज़ा है, ये तो आयतन उखरा है, एक मौजज़ा है, एक दूसरी निशानी अल्लाह ने दी है, ली नुरिया का मिन आयात इन अलकुबरा, ताकि वो दिखाए तुम्हें, ताकि हम तुम्हें दिखाएं अपनी बड़ी निशानियों में से। ओ मूसा ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो अभी 2 मौजज़े ही हैं जो अल्लाह ने तुम्हें दिए हैं, तो झलक ही थी अल्लाह की आयात की, अभी आगे आगे देखो बड़े बड़े मौजज़े अल्लाह ताला दिखाएगा, जब समुंदर फटेंगे, जब टिड्डियों मेंढकों जुओं का खून के जो मौजज़े आए थे, जब उसके बाद मनोसलवा उतरेगा, जब उसके बाद चश्मे 12 फूटेंगे, ये कितने सारे मौजज़े हैं जो अल्लाह ने अभी दिखाने हैं तुम्हें, अभी तो बड़ी बड़ी निशानियां आनी है। इधब इला फिरौन इन्नहु तगा, जाओ फिरौन की तरह, वो बहुत सरकश हो गया। तगा क्या होता है, यानी जब इंसान लिमिट्स क्रॉस कर दे, कितने है ना सारी तुमने बाउंड्रीज क्रॉस कर ली, अब इंतहा हो गई, अब तो ये वो इंतहा को पहुंच गया, उसकी इंतहा क्या थी, अना रब को मुलाला, कि उसने तो खुद ही अपने आप को रब बना लिया, اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اب آپ سوچیں یہ فرعون کوئی عام آدمی کے پاس جانے کو نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ، یہ فرعون وہ ہے جو اتنا سخت ظالم ہے، اور یہ وہ ہے جس نے 10 سال پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو یعنی موت کی سزا سنائی بھی ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے ہمیں تو کوئی ذمہ داری دی جائے تب بھی مسئلہ، ہم سے نہیں ہوتی، ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں یہ وہ، اب پہلے منتیں کرو کہ اب پلیز کر دیں آپ، یہ اللہ کا کام ہے، یہ آپ کر دیں، تو پھر ہم کہیں راضی ہوتے ہیں کرنے پہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے میں نہیں کر سکتا، یہ مجھے آپ نے اتنا بڑا کام دے دی، نہیں اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں اس کے اندر، کہ انسان کوئی بھی کام خود نہیں کر سکتا، پائے تکمیل تک پہنچا سکتا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو۔ تو فوراً اللہ سے دعا کرتے ہیں، قالا اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب، یعنی اگر اب تو نے مجھے یہ کام دیا تو پھر میرا سینہ کھول دے اس کے لیے۔ دیکھیں یہ جو سینہ کے کھلنے کی بات ہے نا، یہ ایک ایسے نہیں ہے کہ کوئی لٹرل سینس میں نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میرا سینہ کھل جائے، بلکہ سینہ کھلنے کی بات یہ ہے کہ یا اللہ میری جو یعنی ایک فگر آف اسپیچ ہے کہ یعنی مجھے ایک سکون دے دے، مجھے کام کر دے، میرے خوف کو دور کر دے، میرے سینے کو نا اس کے کام کے لیے کھول دے، یعنی میری جو پریشانی ہے اس کے لیے۔ آپ دیکھیں اتنے بڑے آدمی کے دربار میں جا کے، ظالم کے دربار میں جا کے بات، جہاں پہ جس کو کہتے ہیں کہ کیا پر نہیں مار سکتی کوئی، وہ جو محاورہ ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اچھا تو خیر کوئی وہ نہیں پر مار سکتی، وہاں پہ اتنی بڑی بات بولنا کہ تو خدا نہیں ہے اور خدا تو ایک ہے، وہ یہ کتنی ہے، چڑیا پر نہیں مار سکتی، یہ کتنی بڑی بات ہے وہاں پہ جا کے کہنا۔ تو وہاں کے لیے اللہ میرے سینے کو یعنی مجھے کام ڈاؤن کر دے، میری گھبراہٹ کو دور کر دے کہ میں نہ ڈروں، نہ میرے اندر کوئی ایسی بات ہو، اور میرے دل اور دماغ فوکسڈ ہو جائے اس کے اوپر۔ اور پھر دیکھیں جس کام کے لیے آپ کا سینہ کھل جائے وہ کرنا کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے کہ آسان؟ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کا شرح صدر ہو گیا نا، اب آپ کا سینہ کھل گیا، اب آپ اس کے اوپر یعنی اتنا آپ کے لیے آپ اس کے اوپر کانفیڈنٹ ہیں، تو اب آپ کے لیے چلنا آسان ہے بالکل۔ اور جب سینے میں گھٹن ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہی چیز کرنی اتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا میری جو انگزائٹی ہے وہ اس کو دور کر دے، اے اللہ مجھے اس کے اوپر مجھے یعنی میں کانفیڈینس دے دے کہ میں نہ ڈروں اور نہ کوئی میرے ایسی میری بات ہو۔ تو یہ اس کا معنی ہو گیا۔ اور یہ بھی ہے اس کے اندر کہ میرے اندر برداشت بھی دے دے کہ جب مجھے باتیں جو بھی کہیں، تو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بھی تھا تو پھر میرے اندر برداشت آ جائے، کنوکشن آ جائے۔ دیکھیں ایک بات ہے لیکن اس میں کتنے سارے معنی آ گئے نا، اس کام کے لیے بہت بڑا دل چاہیے تھا، تو دل بھی پرسکون ہو جائے، اطمینان میں آ جائے۔ اور وہ یسر لی امری، اور اللہ میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ سب سے بڑی بات یہاں پہ آپ نے نوٹ کی ہوگی، امری میرے کام کو۔ ہم تو عرصہ دراز تک کہتے رہتے ہیں آپ کی کلاس کے لیے ہم نے یہ کام کی، آپ کی کلاس ہے وہ بھائی، جب آپ اس کو اون ہی نہیں کرو گے تو آپ کام کیسے کرو گے۔ ہم کسی بھی کام کو نا، جب انسان نے محنت جس میں بھی درکار ہو، انسان محنت وہیں کرتا ہے جہاں پہ وہ اون کرتا ہے کسی چیز کو کہ یہ میری چیز ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا گھر ہے، تبھی آپ اتنا کام کرتے ہیں نا اس میں۔ کسی اور کے لیے کام کرنا ہو تو انسان سر سے اتارتا ہے، اچھا بس ختم ہو کام، کسی طرح وہ کام لگتا ہے، بوجھ لگتا ہے۔ جب ہوتا ہے نا اپنا کام، جب آپ اپنا لیتے ہیں اس کو، یہ میرا ہے، تو پھر وہ نہیں بوجھ لگتا، یہ میرا کام ہے نا۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں تو فوراً ابھی کام ملا ہی ہے، تو یہ نہیں کہا اللہ تیرے کام کے لیے میں نے اس طرح کرنا ہوگا، اللہ تیرا کام ہے ایسے، نہیں میرا کام، اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دے کہ میں پوری طرح اس ذمہ داری کو ادا کر سکوں۔ اب دیکھیں نا کتنی پیاری دعا ہے، اور یہ ہر ایک انسان جو بھی دین کا کام کرنے کے لیے نکلتا ہے، دین چاہے سیکھنا ہے چاہے سکھانا ہے، اس کے لیے یہ بہترین دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے، ہر ایک کو آنا چاہیے۔ तो अब उन्होंने देखें बोझ भी नहीं सीने पे रहा, क्योंकि सीना खुल गया, अब ये काम बोझ नहीं लग रहा, आसान भी कर दे और ये मेरा काम है अल्लाह इसको आसान कर दे, क्योंकि जिस काम को अल्लाह चाहे उसको आसान कर दे, जिसको अल्लाह ना आसान करे वो काम इंसान बड़ा फिर बोझ हो जाता है। तो इसके लिए एक दुआ हदीस में भी आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामों में आसानी के लिए मुसलमानों को सिखाई थी, अल्लाहुम्मा लतुफ बिना फी तैसीरी कुल्ली आसीरिन फइन्ना तसीरा कुल्ली आसीरिन आलई, मैंने आहिस्ता आहिस्ता ही बोली है, आलई का यसीर। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी कि या अल्लाह हम पे लुत्फ व करम कर दे हर मुश्किल काम को आसान करने के लिए, क्योंकि हर मुश्किल काम का आसान करना सिर्फ तेरे कब्जा कुदरत में है। और अगर आपने इसको और भी नोट करना, मारफुल कुरान में ये दुआ लिखी हुई। इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर ये भी दुआ सिखाई, अल्लाह आसानी कर दे मुश्किल ना कर दे, हमारे लिए मुश्किल ना करना। फिर आप लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन वा अंता तजअलुल हज़ना सहलन इज़ा शीत, ऐ अल्लाह आसान कर दे काम को, तो जिस काम को तू चाहे आसान कर दे, सबसे दुनिया का मुश्किल काम भी उसको तू आसान कर सकता है अगर तू चाह ले। तो डिफरेंट दुआएं आसानी के लिए, लेकिन ये ख़ास तौर पे जब दीन के मिशन के लिए, जब तबलीग के लिए, जब किसी को कुछ सिखाना उसके लिए ये ज़रूरी है कि इंसान ये वली दुआ करे। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, ऐ अल्लाह मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे। अब वो पता है कि जब इंसान वैसे भी, ये मूसा अलैहिस्सलाम का तो एक और भी केस था वो भी बात करते हैं, लेकिन वैसे भी इंसान जब कहीं जाके पब्लिक में बोलना हो तो बाज़ दफ़ा ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है, बाज़ दफ़ा इंसान को वर्ड्स नहीं मिलते कि क्या वर्ड्स मैं बोलूँ इस वक्त, क्या मैं इस वक्त कहूँ, किस तरह से अपनी बात को पुट करूँ, तो और बाज़ दफ़ा ज़ुबान में वो सफाई नहीं होती, अल्फाज में वो सफाई नहीं होती, जुमले सही से नहीं बन पाते, तो वो फियर या वो पब्लिक में बोलने का जो एक खौफ सा होता है वो हावी हो जाता है, उस वजह से हो जाती है। तो इसमें दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी ज़ुबान की गिरा को खोल दे कि मैं साफ बात, सही बात बोल सकूं, बिल्कुल क्लियर बात बोल सकूं, और अगर इसके साथ ही अगली बात मिला ली जाए यफ़क़हु क़ौली, ताकि वो मेरी बात समझ सकें, अगर मैं साफ क्लियर बात बोलूँगा और इफ़ेक्टिव बात बोलूँगा तो फिर ही मेरी बात समझ सकेंगे ना, तो ताकि वो मेरी बात समझ सकें, और इनको अलग अलग भी कर सकते हैं कि अल्लाह मेरी ज़ुबान की भी घेरा खोल दे, और अल्लाह कोई मैं नहीं किसी को बात समझा सकता, मगर लोगों को समझाने का काम अल्लाह तेरा है कि तू किसी की समझ में वो बात डाल दे, मेरे से वो बात कराना जिससे लोगों को भी मेरी बात समझ आ जाए। देखिए ये भी आसान नहीं होता कि इंसान किस तरह से बात को ऐसे पुट करे कि लोगों की समझ में आ जाए, किस तरीके से पुट करे। आप डिफरेंट लोगों को आप सुनते हैं किसी की बात, वो एक ही चीज़ होती है, किसी की आपको समझ आती है, किसी की आप कहते हैं मेरे तो सर पे से गुजर गई, तो वो क्या होती है कि यानी किसी का समझाने का कोई तरीका होता है, या बात करने का एक तरीका होता है, या जुमले की फॉर्मेशन होती है, या हो सकता है कोई इतने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करता हो, या हो सकता है ऐसे ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करता हो, ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज के वो समझ से ही ऊपर से गुजर जाए। तो यहाँ पे दुआ की गई कि अल्लाह इनको मेरी बात सही समझ आ जाए, इतनी यानी, और फिक्र जो होती है ना वो डीप अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं, अच्छी तरह समझ आ जाए बात, डीपली समझ आ जाए बात, ऐसी अल्लाह मुझे बात करने की तौफीक अता फरमा जी, कितनी अच्छी दुआ है। तो हर इंसान को इतनी नहीं कैपेसिटी होती कि वो बातें समझा सके, तो इसलिए जो है ना ये दुआ अपने लिए मांगनी चाहिए कि अल्लाह मुझे ऐसी कैपेबिलिटी दे, मुझे ऐसी तौफीक दे कि मैं ऐसे कर सकूं, ये भी अल्लाह से मांगने की ज़रूरत होती है। और दूसरी हम जब यहाँ पे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में लुकनत भी थी, और ये तो हमें हदीस से भी पता चलता है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे सहाबा कराम के साथ, तो ये आपको बता दूं कि हज़रत इमाम हुसैन जो हैं, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, unki zuban mein luknat thi aur balki itni zyada luknat thi ki kabhi kabhi puri baat bhi nahi mukammal kar paya karte the. To ek dafa aap sallallahu alaihi wasallam is tarah baithe hue the, sahaba akram baithe hue, to aap sallallahu alaihi wasallam ne koi baat unse puchi, jaise puch lete hain ki bhai acha aapka iske bare mein kya khayal hai ya kuch hai. To jab wo baat karne lage to unki zuban mein itni luknat thi ki badi mushkil se badi der mein unhone baat ko mukammal kiya. तो ये आपको पता है ना कितनी एक एम्बेरसमेंट भी हो जाती है इंसान को कि अरे लोगों मतलब लोग भी कह रहे हैं इसकी बात ही नहीं ख़त्म हो रही है. अरे एक अजीब सी इंसान उसमें आ जाता है. जिन लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो कितनी एक यानी ट्रबल में हो जाते हैं कि वो कैसे आप अपना जुमला भी ख़त्म करें, सब देख भी रहे हैं और बात भी नहीं पूरी हो पा रही, और जितनी उनको एंग्जाइटी होती है कि मैं ये बात पूरी कर पाऊँ उतना ही ज़्यादा उनकी लुकनत भी बढ़ती है. ये भी एक चीज़ होती है, एक फिनोमेना होता है, इससे रिलेटेड होता है. जितनी एंग्जाइटी ज़्यादा होगी लुकनत उतनी बढ़ती जाएगी. आप वैसे भी देखें ना, हमें एंग्जाइटी हो जाए, हम अच्छे भले जो बोलने वाले हैं वो उनकी भी ज़ुबान में लुकनत आ जाती है. नहीं लुकनत ना सही तो वो ट्रिप करने लगते हैं वर्ड्स पे, राइट. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था कि इसने ये लुकनत अपने चचा मूसा से विरासत में पाई है. तो इसका मतलब मूसा अलैहि सलाम की भी ज़ुबान में लुकनत थी, मगर कैसे थी वो लुकनत उसके बारे में इसराइली रिवायत है, वो अल्लाह आलम उनमें कितना ट्रूथ है. मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी देखे ना, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छोटे लड़के हैं तो उनको कैसे कंसोल भी कर रहे हैं कि वो अपने इसमें ना हो जाए कि आए मेरे से सही बात नहीं की जा रही और सब मुझे यानी कि एम्बेरसमेंट. और उसकी तो जब मूसा अलैहि सलाम के साथ मिला दिया तो एक वैसे भी कि मूसा अलैहि सलाम की भी लुकनत थी तो कोई ऐसी बात नहीं है, और दूसरे उनके साथ मिला दिया कि देखो उनसे विरासत में मिली है, वो कितनी बड़ी शख्सियत है मूसा अलैहि सलाम. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बात ही क्या है ना, कि किसी चीज़ में कोई पीछे कम हो या अपने आप को ऐसे नहीं इन्फीरियर नहीं समझे, कोई दिल छोटा ना करे. सुभान अल्लाह. तो हम देखते हैं तो इसमें आपको रिवायात मिलेंगी कि भाई इस तरह से फिरौन की गोद में एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम बैठे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम बेबी थे, उन्होंने उसकी दाढ़ी पकड़ ली, उसने कहा ये तो ऐसा बच्चा है, ये तो कोई और ही बच्चा है, ये तो नहीं सही, इसलिए जो है ना इसको निकालो यहाँ से. तो उस वक़्त उसने एक टेस्ट के लिए, जब हज़रत आसिया ने कहा कि मैं नहीं निकालना, तो एक टेस्ट के लिए उसने क्या किया था कि कोयले एक तरफ रखे और एक तरफ हीरे जवाहरात. तो जाहिर है बच्चा जो होगा वो हीरों की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो उसने यानी ये बताने के लिए, देखो ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये इसके अंदर बड़ी समझ है, ये तुम ऐसे ही कहते हो कि बच्चा इसको क्या पता था इसने तुम्हारी दाढ़ी पकड़ ली, तो ये बड़ा तेज़ है. तो उसने ऐसे रखे मूसा अलैहि सलाम का, बच्चा अट्रैक्ट होता है चमकने वाली चीज़ों से, हीरों की तरफ को हाथ बढ़ाया तो जिब्राइल अलैहि सलाम ने उनका हाथ मोड़ दिया और उन्होंने अंगारा उठा के अपने मुंह में रख लिया. कहा जाता है उसकी वजह से उनकी लुकनत थी, मगर बाहर कैसी है इसराइली रिवायात है. हमें बस ये पता होना चाहिए कि हदीस में ऐसी कोई बातें तो नहीं मिलती हैं, ये इसराइली रिवायात से हम ले सकते हैं, मगर हदीस से हमें सिर्फ पता चलता है लुकनत थी, किस वजह से थी वल्लाह आलम. वाजा अली वज़ीर मिन अहली, और फिर आगे दुआ में है ए मेरे रब मेरे लिए वज़ीर बना दे मेरी फैमिली में से. वज़ीर कौन? जो मेरा राइट हैंड हो, जो मेरा मददगार हो इस काम में, जो मेरा जैसे कहते हैं ना वाइस प्रेसिडेंट, वो मेरे साथ ही इसको काम को करें, और मेरे घर वालों में से हो. क्यों घर वालों में से क्यों कहा? अब मतलब हम इंसान सोच सकता है क्या ये अकरबा परवरी तो नहीं है कि अपने घर वालों की सिफारिश कर रहे हैं, सिफारिश से अपने घर वालों को नौकरी दिला लेना या ये कर लेना. नहीं, बात यह है कि जो काम मूसा अलैहिस्सलाम करने जा रहे हैं इसमें ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जिसको मूसा अलैहिस्सलाम जानते हों, जिसको कम्फर्टेबली आसानी से काम दे सकें, जिस पर ट्रस्ट भी करते हों, जिसकी क्रेडिबिलिटी भी जानते हों, और जो दीन में भी अच्छा आगे हो. और हारून अलैहिस्सलाम अपने लोगों में स्कॉलर थे, वो मेरे लोगों के यहाँ बड़े अच्छे स्पीकर थे और उनकी ज़ुबान भी साफ थी. और दूसरी जगह में ये आता है यहाँ पे देखें, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर आगे सिफारिश में फरमाया हारून आखी मेरे भाई हारून को ही बना दे. तो वज़ीर अल्लाह ताला ने हर एक पैगंबर को भी वज़ीर दिए, वज़ीर इंसान के लिए मददगार जो उसके साथी होते हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे आसमानों में दो वज़ीर हैं जिब्राइल और मीकाईल, और ज़मीन पर मेरे दो वज़ीर हैं अबू बकर और उमर, यानी जो मेरे साथ काम जो करते हैं, मेरे काम में मेरी इस जिम्मेदारी में मेरा हाथ बटाएं. और इसमें कोई हर्ज नहीं होता कि इंसान अपने लिए हेल्प मांग ले. देखिए ना यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम अपने लिए एक हेल्प मांग रहे हैं कि मुझे कोई साथ चाहिए इस मिशन के लिए, इस बोझ को बांटने के लिए, और उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमा रहे हैं. तो ये नहीं करना चाहिए इंसान को कि अगर मैंने कह दिया कि मुझे हेल्प चाहिए तो ये तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, दूसरा सोचेगा मुझे क्या मैं अकेली नहीं काम कर सकती। तो हमें चूंकि ना ये अपनी जात की फिक्रें बहुत रहती हैं, अपनी अना बहुत होती है कि मैं क्यों हेल्प मांगू और मैं क्यों ये कहूँ कि मुझे हेल्प चाहिए, तो इसलिए हम जैसा तैसा काम सर से उतारने वाला कर लेंगे, लेकिन किसी और को नहीं साथ अपने खड़ा करेंगे, क्योंकि अगर कर लिया तो इसका भी नाम हो जाएगा, लाइमलाइट इसको मिल जाएगी, इस ये भी काम सीख लेगी, तो फिर मेरी क्या जरूरत रह जाएगी, और मैं ऑल इन ऑल रहना चाहती हूँ, तो मैं नहीं किसी को साथ मिलाती। ये रवैया नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरे को साथ मिलाएं और साथ मिला के फिर उस काम को और अच्छा करने की कोशिश करें। यहां पे देखें, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को की सिफारिश एक तरह से कर रहे हैं कि या अल्लाह तू उनको मेरा राइट हैंड बना दे, यानी उनको भी नबूवत दे दे। कितनी बड़ी है कि ये बात है ना, अपने भाई के लिए भी ऐसी चीज मांगना। और इससे हमें सबको ये सबक लेना चाहिए कि हम काम को बेहतर करने के लिए अगर हमें हेल्प चाहिए हो तो हेल्प ले लें, इसमें कोई हमारी सेल्फ एस्टीम लो नहीं हो जाती, कुछ नहीं हमारा कुछ बिगड़ता, मगर काम को प्रायोरिटी दें। अब मूसा अलैहिस्सलाम को चूंकि काम बेहतरीन करने की फिक्र थी कि काम बेस्ट होना चाहिए, उनको ये नहीं फिक्र थी कि मेरी ईगो का क्या होगा फिर, हाँ, तो इसलिए उन्होंने मददगार मांगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिससे को अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी देता है किसी काम को पूरा करने की, तो अल्लाह ताला उसके लिए अगर खैर चाहता है तो उसको वजीर दे देता है जो नेक होते हैं, नेक वजीर उसको दे देता है, नेक कंपेनियंस दे देता है, नेक साथी दे देता है, जिसके लिए अल्लाह ताला चाहता है खैर, या किसी काम को उसको अल्लाह ताला जिम्मेदारी देता है। और ये है उन, देखें आप यहां से पता चलता है मूसा अलैहिस्सलाम में जिम्मेदारी का जो एहसास है। अब हम में अगर कोई जिम्मेदारी मिले तो हमारा रवैया क्या होता है, उछलने कूदने लगते हैं खुशी से, मुझे ये ओहदा मिल गया, मैं तो ये मुझे ये बना दिया, और मैं तो ऐसे मैं ये बन गई हूँ आपसे, ये मेरा टाइटल है आपसे, और बड़े फखरिया वो करते। हालांकि अगर आप देखें सहाबा करम तो ओहदे लेने से भी घबराते थे, ये कि जिम्मेदारी है हम पर पड़ेगी, पता नहीं हम कर सके या नहीं। अगर कोई आपको जिम्मेदारी दे रहा है जिसके लिए आप कॉम्पिटेंट हैं और उसने आपको उसके लिए चुना है, तो फिर अल्लाह से मदद मांग के वो जिम्मेदारी ले, वरना ऐसे नहीं कि उसका लालच करें और खुद मांगे और खुद कहें कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये ओहदा मिले, मैं नहीं कुरान पढ़ सकती अगर आप मुझे ग्रुप इंचार्ज नहीं बनाएंगे, अगर ग्रुप इंचार्ज बनाना है तो फिर पढ़ूंगी, अगर नहीं बनाना तो फिर मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता फिर, यानी आप कंपल्शन है कि ग्रुप इंचार्ज होंगे, तो ये क्या अल्लाह ने कुरान इसलिए उतारा कि ग्रुप इंचार्जेस बनाए जाए, ये कुरान के पढ़ने की शर्त क्या ये है? आपने पढ़ना किसके लिए है, अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए या ग्रुप इंचार्ज के लिए? ऐसा कोई किसी लोग ने कहा तो फिर मैं आपको ये बात कह रही हूं, ओहदों के लिए मत पढ़ें, ये अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पढ़ें। और फिर ऐसे जो लोग थे जब उनको ओहदे नहीं मिले तो वो चलेगा, आप भी सोचें आपको ओहदा ना दिया जाए क्या फिर भी इस कुरान के साथ इतनी कमिटमेंट रखेंगे, यहां आप भी कहेंगे को खुदा हाफिज, वो तो उस वक्त हमें आपने कहा हुआ था तो फिर हम कर रहे थे, और अब नहीं कहा हुआ तो फिर अब हमने किसी को सुनना नहीं, किसी से सबक, तो अब हम खुद भी नहीं कर पा रहे, और अब हम सुस्त हो जाते हैं इस तरह, तो अब आप हमें जरूर दें ओहदा, ऐसे नहीं होता, अल्लाह को ऐसे लोगों की फिर जरूरत नहीं है, ना उनके काम की और ना उनके कुरान पढ़ने की। इस तरह से बहुत लोग फिसलते हुए देखे जो इस चीज से नाराज होके और कुरान को छोड़ के चले गए, अल्लाह ताला फिर देखा जो जिनकी नीयत जैसी होती है फिर वैसा ही उनको फल भी मिलता है, कुरान से भी महरूम हो गए क्योंकि नीयत ही पहले दिन से सही नहीं है। तो इस नीयतों को छोड़ दें, ओहदों के लिए नहीं मैं कुरान पढ़ रही, अपनी नीयत को रिवाइज करें हर दफा, मैं क्यों पढ़ रही हूं, मैं क्यों सीख रही हूं, मैं क्यों याद कर रही हूं, मुझे से क्या चाहिए, और मैं इतनी डेडिकेशन से क्यों पढ़ रही हूं, क्या सिर्फ इसलिए कि मैं जीपीएल हूं या मुझे बनना है जीपीएल, और अब मैं इस काबिल हो गई हूं, अभी तक नहीं आपने बनाया, मैं तो इतने सालों से पढ़ रही और अभी तक नहीं बनाया, औरों को बनाते जा रहे हैं जो मेरे बाद आए, तो फिर अच्छा फिर खुदा हाफिज। ये हमारे हाल। और आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम की कैफियत देखें कि वो इस इतना बड़ा मनसब है कि किसी इंसान को इससे बड़ा कोई भी मनसब नहीं मिल सकता जितना बड़ा मूसा अलैहिस्सलाम को मिला। लेकिन आज ही कितनी है कि अल्लाह मुझे हेल्प चाहिए इसमें, अल्लाह मुझे तू ही मेरी जुबान खोलेगा, अल्लाह तू ही मेरे लिए आसान करेगा, अल्लाह लोगों को सिखाने का काम भी समझाने का तू कर सकता है, अल्लाह मेरी नहीं इतनी हिम्मत। इफेक्टिव काम, एक होता है काम करना और एक होता है इफेक्टिवली काम करना कि इंसान की ये तड़प हो, इनको समझ आ जाए, इनको ये बस बात किसी तरह इनके अंदर उतर जाए, वो एक डिफरेंट चीज होती है। दर्श देने तो बड़े आसान है, जो जाके मुझे जो मिला मैंने उठा के बस जाके चार लाइनें सुना दी, चार हदीसें इधर से पकड़ी उधर से। इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना ये सीखना और ये इस दुआ से मकसूद होना चाहिए, अल्लाह इतना इफेक्टिव हो इनके दिलों में उतर जाए, लाइन को बात समझ आ जाए, ये तड़प हो किसी तरह, फिर ये मान जाए, ये किसी तरह इस तरफ आ जाए, ये तड़प होनी चाहिए। ये नहीं कि बस मेरा रोब पड़ जाए और इसको कितनी हदीसें आती हैं और किसको कितनी याद है और उसको कितनी, ये नहीं, उसके लिए मैं बड़ी बड़ी हदीसें और बड़ी बड़ी आयतें मैं ऐसे ऐसे बस बोलती जाऊं और लोगों को पता चले कि मैं कितना, मुझे हिफ्ज है कितना कुरान और मेरा नॉलेज कितना है। जब ऐसी वो होंगी तो फिर क्या उनके समरात होंगे। तो दुआ मांगी ये कि मेरे भाई को भी मेरा ये अल्लाह बाजू बना दे। अच्छा अब आप देखें यहाँ पे कि किसको मांग रहे हैं, अपने भाई को। इससे पता चलता है कि उनका ताल्लुक उनकी फैमिली में, फैमिली के लोगों के साथ कैसा था। इस वक्त हारून अलैहिस्सलाम तो मिस्र में बैठे हैं, फिर जब अल्लाह ताला ने उनकी ये मान ली तो फिर उनको नबूवत मिल गई, वहाँ पे फरिश्ता उनके पास आ गया। लेकिन इससे पहले आप ये देखें बात कि इससे उनके ताल्लुकात किस किस्म के हैं, रिलेशनशिप्स उनके, उनकी सिला रहमी कैसी है, ये पता चलती है यहाँ से। क्योंकि कोई और होता अगर तो ये कहता था भाई मेरे ख़ानदान से तो किसी को ना बनाना क्योंकि मुझे अपने ख़ानदान का पता है और जैसे उनके सलूक हैं और वो तो ऐसे हैं और वो तो ऐसे हैं, उनसे नहीं बनना चाहिए, बाहर का कोई भी दे दे। नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखें इस चीज़ की हिर्स की कि अल्लाह मेरी फैमिली भी इसमें शामिल हो जाए, उनका भी हिस्सा पड़ जाए, मेरे भाई का हिस्सा भी इस खैर में पड़ जाए, मेरा भाई भी खैर पाने वाला हो जाए, वो भी नबी बन जाए। कितनी खैर ख्वाही है। जब एक बंदे की खैर ख्वाही, एक बंदा खैर ख्वाह होता है तभी वो चुना जाता है, तभी मूसा अलैहिस्सलाम चुने गए। कि एक खैर ख्वाही, जब देखिए जब अपने घर वालों के लिए खैर ख्वाही नहीं होगी, इंसानियत के लिए क्या खैर ख्वाही होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी खैर ख्वाही थी अपने चचा के लिए। तो खैर ख्वाही जब तक ये जज्बा अंदर ना हो कि खैर पहुंच जाए दूसरे तक, अगर दिली हसद से, बोझ से, उन कीनों से, इन चीजों से भरे हुए हैं तो क्या खैर ख्वाही आएगी। तो देखें उनको अपने भाई की ये हिर्स थी कि मेरे भाई को भी खैर मिले। हम भी क्या अपनी फैमिली के लिए चाहते हैं कि उनको भी खैर मिले। वो जो मैं खैर पा रही हूँ इस वही की खैर जो मुझे मिल रही है, जो इसकी बरकतें मुझे रही, मेरी फैमिली को भी मिले, उन तक भी मैं ये लेकर जाऊं, उन तक भी खैर पहुंचे, उनको भी मैं इन्वॉल्व करूं, उनको भी साथ शामिल करूं। और वश दुद भी ही अजरी, या अल्लाह मुझे मजबूत कर दे उसके, इसके साथ कुव्वत मेरी, यानी किसके साथ, मेरे भाई के साथ मेरी कुव्वत को मजबूत कर दे, यानी मुझे सपोर्ट दे उसके जरिए। वह अशरे खूफी अमरी, अब ये देखें नबूवत ही मांग ली ना उनके लिए, आहिस्ता आहिस्ता करते करते, पहले घर कहा, फिर ये कहा, फिर ये कहा, फिर ये अल्लाह मेरे काम में ही शरीक कर दे उनको, यानी सिर्फ वैसे ही नहीं कि मुझे सपोर्ट करें बल्कि नबूवत भी मुझे उनके लिए दे दे। किसी इंसान ने अपने भाई के लिए उतनी बड़ी भलाई ना मांगी होगी जितनी के मूसा अलैहिस्सलाम ने मांग ली, और इससे बड़ी चीज़ नहीं कोई हो सकती जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनके भाई को खैर पहुंची, इससे बड़ी खैर किसी भाई को अपने भाई से नहीं मिल सकती। क्योंकि उनकी वजह से वो बने हैं नबी, और ये हालांकि हारून अलैहिस्सलाम बड़े हैं मूसा अलैहिस्सलाम से। कई नुसब्बिह, कई नुसब्बिह का कथीरा, ताकि हम तस्बीह बयान करें तेरी बहुत ज़्यादा। अब तस्बीह बयान करने के लिए उलमा फरमाते हैं कि उनको तस्बीह तो अकेले भी बयान हो सकती थी, उनको क्या ज़रूरत है कि हम दोनों बयान करें। अब वो तू मेरे भाई को भी बना दे ताकि मैं भी बयान करूँ और वो भी, تو مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ ذکر اور تسبیح میں جو ماحول ہوتا ہے نا, جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں ان کا بڑا دخل ہوتا ہے. جس کے ساتھی اللہ والے نہیں ہوں گے وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا جتنی وہ کر سکتا ہے جس کا ماحول اللہ والوں کا ہو, جس کے ساتھی ذکر کرنے والے ہوں, جس کے ساتھی اللہ کی پہچان رکھنے والے ہوں. تو اس سے پتہ چلا جو شخص اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی کمپنی بھی ایسوں کی رکھے. اور وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا, ہم تسبیح بھی کریں تیری بہت زیادہ, تیرا ذکر بھی کریں بہت زیادہ. تسبیح ہے اللہ کے اوپر سے ساری جو ایسی جو اس کی شان کے خلاف باتیں ان سے ان کو پاک قرار دینا, اور ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا اس کی حمد بیان کرنا. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا, اے اللہ تو تو بے شک ہمیں ہر وقت ہی دیکھنے والا ہے. اب یہ وہ والی بات ہے جو کہ وہاں پہ زکریا علیہ السلام نے فرمائی تھی نا پچھلی سورت میں کہ یا اللہ تجھ سے مانگ کے میں کبھی محروم نہیں رہا, پوری بات کر کے تجھ سے مانگ کے میں. اسی طرح یہ, اسی لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی تسبیح, کوئی اس کی حمد, کوئی اس کی پریز بیان کرنی چاہیے اپنی جب دعا مانگنے لگے. اللہ تجھ سے مانگ کے تو میں کبھی خالی ہاتھ ہی نہیں رہی, تیرے در سے تو میں کبھی خالی نہیں گئی, تیرے در سے تو کوئی خالی نہیں جاتا. یہاں پہ اسی طرح وہ فرما رہے ہیں, اے اللہ تو ہمیشہ ہمارے کام پہ نگران ہے, ہمیشہ سے تو ہمیں یعنی ہماری ٹیک کیئر کرتا ہے, تو ہمیں دیکھتا رہتا ہے. تو ہمیں دیکھنے سے مطلب کیا ہے کہ یعنی تو ہمارا خیال رکھتا ہے اللہ, ٹھیک ہے, تو اللہ ہمیشہ سے ہی ہمارا خیال رکھتا ہے, تو ہمیشہ سے تو نے ہمیں اپنی نظر میں رکھا ہوا ہے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ بس تم عطا کر دیے گئے جو تم نے سوال کی. اب دیکھیں یہاں پہ نہ آیا وقالا, نہ آیا ثم, نہ آیا فقالا, بلکہ سیدھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس تمہیں مل گیا جو تم نے مانگا, تمہارا سوال پورا ہوا, ایز اٹ از جو تم نے مانگا تمہیں دے دیا گیا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے کہ اے نبی آپ نہ فکر کریں, آپ جی جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سوال ضرور پورا فرمائے گا. اللہ کے ہاں کوئی بھی یعنی خالی ہاتھ نہیں جاتا, وہ ہر سوالی کی جھولی بھر کے بھیجتا ہے. آپ کہیں گے اب ہماری تو نہیں دعا قبول ہوئی, ہمیں تو نہیں ملا, تو حدیث میں ہے کہ دعا تو تین طرح سے قبول ہوتی. چلو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایز اٹ از نہیں قبول کی جیسا آپ نے مانگا تھا, تو یقیناً کوئی مصیبت آ رہی تھی جو اللہ نے ٹال دی. شکر کریں گے اللہ نے اس مصیبت سے آپ کو بچا لیا, ورنہ یہ دعا قبول ہو بھی جاتی تو اور وہ مصیبت آ جاتی تو کتنی بڑی زحمت تھی, پھر آپ نے کہنا تو اس سے بہتر تو تھا یہ مصیبت ٹل جاتی. یا پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ذخیرہ کر لیا آخرت میں, یہ تیسری طرح سے دعا قبول ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہو سکتا ہے یہ چیز آپ کے لیے اچھی نہ ہو جو آپ مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ذخیرہ کر لیا, جب آپ آخرت میں جائیں گے آپ نے کہنا ہے دنیا میں میری کوئی دعا ہی نہ قبول ہوتی, سارا کچھ ہی مجھے یہاں پہ مل جاتا. تو اللہ کے ہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا, اور بعض دفعہ دعا اسی وقت نہیں قبول ہوتی, کچھ دیر کے بعد ہوتی, اس کا کوئی ٹائم ہوتا ہے. لیکن دیکھو اللہ اس پہ قادر ہے, جس کو جو چاہے دیتے. جتنا کچھ مانگا تم نے موسیٰ, چاہے سمجھنے کی بات, چاہے سینہ کھلنے کی بات, چاہے آسانی کی بات, چاہے وزیر کی بات, سب کچھ اللہ نے تمہارا قبول کر لیا. سبحان اللہ. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى, اور یہ کوئی فرسٹ ٹائم تھوڑی ہے کہ اللہ نے ایسا کیا, اے موسیٰ ہم نے تو پہلے بھی تم پہ بڑا انعام کیا ہوا. سبحان اللہ. البتہ تحقیق انعام کیا ہم نے تجھ پہ دوسری بار, یعنی یاد کرو ابھی تو یہ جو صرف ہے یہ تھوڑی انعام ہے, پہلے بھی ایک دفعہ انعام ہوا ہے. کب؟ اب وہ بات یاد دلائی گئی. از اوہینا الا امی کا ما یوحا, جب وحی کی تھی ہم نے تیری ماں کی طرف جو وحی کی تھی. اور وہ وحی کون سی تھی؟ وہ والی نہیں تھی جو نبیوں کے اوپر کی جاتی ہے, بلکہ یہ وہ وحی ہے جو کہ الہام کی صورت میں, جیسے ہم نے سورہ نحل میں پڑھا کہ شہد کی مکھی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کا لفظ استعمال فرمایا, تو الہام ہے یہ. اسی طرح حضرت مریم کے لیے تو یہ پہلا انعام ہوا تھا, اور یہ جو اب دعا کی قبولیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دی, یہ دوسرا انعام ہے. اس سے پہلے بھی تو ہم نے تجھ پہ انعام کیا تھا, اب وہ انعام یاد دلایا جا رہا ہے. کیا انعام تھا؟ جب ہم نے, تم تو ایک بیبی تھے, تمہیں تو پتہ بھی نہیں تھا, हमने तो तुम्हारी माँ के दिल के अंदर एक बार डाली, अब ये कौन सा जमाना याद दिलाया जा रहा है? ये पहला इनाम याद दिलाया जा रहा है। पहला इनाम उस वक़्त हुआ था जिस वक़्त के फिरौन ने हुक्म दिया हुआ था हर बेबी को, बेबी बॉय को ज़िबा कर दिया जाए। कितना जालिम होगा, आज हम जालिमों को देखते हैं तो हम सोचते हैं ये कितने जालिम है, ऐसा जालिम तो कोई हो ही नहीं सकता। मगर अगर हम देखें तो फिरौन किस हद तक जालिम था कि ऐसा जालिम तो शायद दुनिया में दोबारा ना पैदा हुआ ना उसे पहले था, जो इतने छोटी बेबी इनोसेंट्स को इस तरह से कर सकता। तो उस वक्त ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने बात डाली उनके दिल के अंदर, क्या बात डाली? अनकदफी ही, कि डाल दो इसको किसमें, फित ताबूत, इस बेबी को ताबूत में डाल दो। और उसमें क्या, फकदी फी ही, फिर डाल दो इसको किसमें, फिल यम, यम में, दरिया में, ताबूत को दरिया में डाल दो। फल युल्की हिल यम्मू बिस्साहिल, तो फिर जरूर डाल देगा इसको ये दरिया साहिल पे, ताबूत में ये बच्चा डाल दो, ताबूत को पानी में डाल दो और वो दरिया जो है वो साहिल पे जाके इसको डाल देगा। या खुद हु आदुवुल्ली वा आदुवुल्लाहु, इसको फिर ले लेगा इसका दुश्मन और मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन और उसका दुश्मन। यानी कौन था? फिरौन। अल्लाह का दुश्मन कैसे था कि उसने खुद अल्लाह ताला की जो रबूबियत है उसका खुद अपना किया था कि मैं हूँ वो रबू। और इसका दुश्मन कैसे, मूसा अलैहि सलाम का कैसे दुश्मन था? उस वक्त ही दुश्मन था, हाँ तो जानी दुश्मन था ना, वो तो जिबा करना चाहता था। तो एक तो ये था, दूसरा ये कहा जाता है कि फिर यम तक जो है ये तो मूसा अलैहि सलाम की माँ से बात है, उम्मे मूसा से बात है। आगे अल्लाह ताला ने इसको हुक्म दिया दरिया को, फल युलक ही, जरूर चाहिए कि डाल दे यानी या जरूर डाल दे दरिया साहिल पर इसको, या खुद हो वो ले लेगा इसको उसका दुश्मन और मेरा दुश्मन और उसका दुश्मन यानी फिरौन। वह अलकई तो आले का मोहब्बत अम्मी, और मैंने डाल दी है, मैंने डाल दी तुझ पर मोहब्बत अपनी तरफ से। ये अल्लाह ताला मूसा अलैहि सलाम को फरमा रहे हैं कि ये हुआ था वाकया मूसा, जब तुम्हारी माँ के दिल में ऐसे डाला था और ये सारा उसको प्लानिंग इसके दिल के अंदर डाली थी कि ये प्लानिंग हो, ऐसे ऐसे करना है तुमने, और उस वक़्त हमने तुम्हारे ऊपर मोहब्बत डाल दी थी अपनी तरफ से। यानी मूसा अलैहि सलाम वाज अडोरेबल बेबी, इतने ज़्यादा क्यूट होंगे, या जो जैसे हम किसी बेबी को देखते हैं तो एक कुछ बेबीज होते हैं इतना उनके ऊपर प्यार आता है, अजनबी क्यों भी हों तो इंसान उठाने उठा के कहता है मैं थोड़ी देर पकड़ लूँ। अल्लाह ताला वो मोहब्बत डालता है, अल्लाह उसकी शक्ल में उसके अंदर ऐसी चीज़ डाल देते थे कि ये दिल अल्लाह के हाथ में है ना। तो अल्लाह ताला जिसकी तरफ चाहे दिलों को मोड़ दे, जिसके लिए चाहे अपनी मोहब्बत डाल दे, किसी के लिए मोहब्बत आपके अपने बस में नहीं होती, अल्लाह डालता है किसी के लिए मोहब्बत। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम के ऊपर डाल दी थी, ये अल्लाह का एक और एहसान है कि जो भी देखता मोहब्बत करने लगता, जो भी देखता उनसे प्यार करता, जो भी देखता उसका खुद पे काबू नहीं रहता था, अल्लाह ने उनको ऐसा कर दिया था, इतनी उनके अंदर अट्रैक्शन डाल दी। तो फिर इसका मतलब मोहब्बत भी मांगनी हो ना तो अल्लाह से मांगा करें कि अल्लाह बंदों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे, अल्लाह पैदा करेगा। अब आप जो इतनी मेहनत करें, मैं इतनी मेहनत करूं, हाय हम इन किस तरह इनके दिल जीत लें, हस्बैंड का दिल किस तरह जीत लें, उसका दिल किस तरह जीत लें, हम नहीं जीत सकते। ये अल्लाह मोहब्बत डालता है, आपको किसी से भी दिल चाहता है कि कोई आपसे मोहब्बत करने लगे अल्लाह से मांगे, उनके दिल किसके कंट्रोल में, अल्लाह के, बजाय उल्टे सीधे काम करने के, ये पढ़ के फूंक रहे हैं वो कर रहे हैं जादू तावीज़ और कोई लोग इन चीजों में पड़ जाते हैं, नहीं मोहब्बत देने वाला तो अल्लाह है। देखो अल्लाह ताला ने कैसे वो इतनी यानी इस वक्त क्या सा टाइम है जिसके अंदर बच्चे जिबा हो रहे हैं, ऐसे टाइम के अंदर अल्लाह ताला ने इनके चेहरे पे इनके ऊपर ऐसी मोहब्बत डाल दी कि बस सब मोहब्बत करने शुरू हो गए। किसी का बच्चा नहीं, किसी के अपने बच्चे नहीं थे वो मूसा अलैहि सलाम फिरौन के या बीबी आसिया के, लेकिन अल्लाह ने कैसी मोहब्बत डाली। वाली तुसना अला आईनी, और ताकि तू परवरिश पाए मेरी निगाह में, निगाह तो है यहाँ पे मतलब क्या है कि यानी मेरी सुपरविजन में, मेरी निगरानी में, मेरे सामने ऐसे ظالم آدمی فرعون اس کی جو تیرا دشمن ہے اسی کے گھر میں میں تجھے پلواؤں گا اپنی نظر کے سامنے. یعنی اللہ نے اس وقت بھی تیرے اوپر پوری نظر رکھی ہوئی تھی کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ان کی پرورش ہو رہی ہے, کیسے ان کو ٹیک کیئر کیا جا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ پھر وہ جو باسکٹ آ گئی, وہ تابوت آ گیا, پھر انہوں نے وہاں سے اٹھا لیا, پھر بی بی آسیہ کے پاس لے کر گئے, ان کے کوئی اولاد نہیں تھی, انہوں نے پھر ان سے کہا کہ ہم اس بچے کو اڈاپٹ کر لیتے, تو وہ تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن انہوں نے اتنا مجبور کیا, جیسے ہسبینڈ کو بیوی کے کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں بعض دفعہ, تو اتنا کہا کہ وہ پھر فرعون نے ان کو اپنے محل میں رکھ لیا. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے ماں سے دور تھے, اتنا روئے اور کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے. تو اس وقت پھر انہوں نے بھیجا کہ جاؤ جا کے, ایسے نہیں لگتا کوئی فیری ٹیل سن رہے ہیں, لیکن دیکھو ایسے حقیقت میں ایسے ہوا. اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کے لیے کیا 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 معجزے دکھا دے, اللہ کی مرضی ہے. یہاں پہ بچے کٹ رہے ہیں, وہاں پہ ایک بچہ ایسا ہے جو جس کا فرعون سب سے زیادہ دشمن ہے, جس کے لیے سارے بچے کٹ رہے ہیں, وہ فرعون کے دربار میں اور اس کے لیے بھگائے ہوئے ہیں لوگ کے جاؤ جا کے کوئی لے کر آؤ جو اس کو دودھ پلائے اور جس کا دودھ یہ پی لے, اور وہ ساری اور عورتوں کو لے کر آئے لیکن کسی کا بھی دودھ پینے کو موسیٰ علیہ السلام تیار نہیں تھے. تو پھر اس تمشی اختو کا, اب جب چلی جا رہی تھی تیری بہن, وہ بہن نے بھی سارا دھیان رکھا کہ کہاں کہاں تابوت جا رہا ہے اور کنہوں نے اٹھایا, تو بہن کو پتا تھا کہ یہ لے کر گئے. فتقول پھر کہہ رہی تھی حل ادلکم علی من یکفلو, کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر کا پتہ جہاں پہ یہ بچے کی کفالت کریں گے. اور آگے ہمیں قرآن میں ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ لوگ اس کے بڑے ہمدرد بھی ہوں گے, وہ اس کی بڑی اچھی ٹیک کیئر کریں گے, وہ ایسے ہوں گے. فرجانا کا الی امی کا, پھر تو لوٹا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کی طرف. اور دیکھو ماں کی طرف لوٹے بھی اس لیے کہ ماں کو لے کر آئے, ان کا دودھ انہوں نے پیا, اور پھر ماں نے کہا کہ میں تو, انہوں نے کہا ہم آپ کو ہی رکھنا چاہتے ہیں, ہائر کرنا چاہتے ہیں اس کام کے لیے کہ آپ اس بچے کو کی کو نرس کریں اور آپ اس کو کیئر کریں. انہوں نے کہا میں تو اپنا گھر نہیں چھوڑ کے آ سکتی, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس کو بچہ بھی دے دیا, ان کو وظیفہ بھی لگا دیا, ان کے سارے پیمنٹ بھی ہے کہ بھائی سب بچے کی کیئر کرنے کے لیے اپنے ہی بچے کو دیکھ رہی ہیں اور اپنے بچے کے اجرت بھی لے رہی ہیں. یہ ہوتے ہیں جو اللہ کے کام ہوتے ہیں اور اس کی حکمتیں ہوتی ہیں. کئی تقرا آئینہا, تاکہ ٹھنڈی ہو ان کی آنکھ, کیونکہ ظاہر ہے ماں کا دل تو بے چین ہی تھا نا. اور اب کیا اللہ تعالیٰ انتظام کہاں سے کرتا ہے, جب انسان مشکل میں ہو تو سوچے اس واقعے کو کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے اور کہاں سے انتظام کرتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا, جسے انسان کے تصور میں ہی نہیں آ سکتا کہ کدھر سے اللہ تعالیٰ کیا بنا دے گا. کبھی امّ موسیٰ نے سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو تاکہ اس کی ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں, ولا تحزن, اور تاکہ وہ غم نہ کرے, کیونکہ جب سے باسکٹ میں ڈالا تھا جتنا مرضی ماں کو کہہ دیں کہ ہاں نہیں بچہ سیف ہوگا, لیکن ماں کے لیے کتنا مشکل ہے اس چیز کے اوپر کہ ان سے بچانے کے لیے پانی میں ڈال دیا, پتہ نہیں بچہ کدھر چلا جائے, پانی میں غرق ہو جائے, ڈوب جائے, کیا ہو جائے. اور پھر اگلا انعام, جب تم بیبی تھے ابھی تو اللہ کی پہچان بھی نہیں تھی, ابھی تو اللہ کا پتہ بھی نہیں تھا, تب اللہ نے دیکھو تمہارے اوپر کیسا احسان کیا. تو کیا موسیٰ اب تم فرعون کے دربار میں جاؤ گے تو کیا اللہ نہیں تمہاری نگہبانی کرے گا, کیا اللہ نہیں تمہاری کیئر کرے گا. اور پھر دیکھو یاد ہے جب تم بڑے ہو گئے تھے, پھر وہ قتل تھا نفسن, اور پھر ایک جان تمہارے ہاتھوں غلطی سے ایک آدمی قتل ہو گیا. فنجینا کا من الغم, تو نجات دی ہم نے تجھ کو غم سے. اس وقت کیسے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور پھر جانی سفر کرتے رہے, یہ بھی نہیں پتا کدھر جانا ہے, کدھر رہنا ہے, کدھر کھانا ہے, کدھر پینا ہے, کیا میری منزل ہے, کیا بس وہاں سے دوڑ پڑے, کیونکہ وہ آدمی جو قتل ہو گیا تھا اور پتہ چلا کہ فرعون نے موت کا فیصلہ دے دیا, سزا دے دی ہے, تو ان کو تو سیکرٹلی بتا دیا گیا تھا. تو ہم نے اس وقت تم کو نجات دی تھی غم سے, وفتنا کا فتونا, اور آزمایا تھا ہم نے تجھ کو آزمانا. کتنی بڑی سخت آزمائشوں سے موسیٰ علیہ السلام گزرے, ایک تو وہ قتل ہو گیا, پھر آگے پھر گئے نہ, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی آپ کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا, کیسے آپ کو گھر بھی دیا, نوکری بھی دی, شادی بھی آپ کی وہاں پہ کرائی. تو देखें, अल्लाह ताला ने टेस्ट से गुजारा, एक के बाद एक टेस्ट था मूसा अलैहिस्सलाम का, मगर टेस्ट के बाद ही इंसान सोना कुंदन तभी बनता है जब तपाया जाता है। इम्तिहान जब जिंदगी में आते हैं तो तब वो इंसान को और मजबूत करने के लिए आते हैं, उसके दर्जात को बुलंद करने के लिए आते हैं। आप देखें, बच्चों के इम्तिहान होते हैं तो उससे क्या होता है, जब वो लायक बच्चे होते हैं तो इम्तिहान होते हैं तो क्या होता है, प्रोमोशन होती है, अगले ग्रेड में जाते हैं, फिर उससे ज्यादा ऊपर प्रोमोट होते हैं, फिर उससे ज्यादा ऊपर। अगर इम्तिहान ही ना होते वो तो उसी क्लास में रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें इम्तिहानों में डाल के आगे से आगे बढ़ाता गया अपने लिए। असल में अल्लाह ताला ने तैयार किया इस काम के लिए जो अल्लाह ने लेना था, और वो काम नहीं उस वक्त तक मूसा अलैहिस्सलाम कर सकते थे जब तक इन ट्रायल से नहीं गुजरते। तो ये रास्ता है ही ऐसा, पैगंबर भी इसमें आजमाइशों से गुजरे दीन के रास्ते में, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। ये जो जिंदगी के अंदर टर्मोइल्स आते हैं, टेस्ट आते हैं, ट्रायल्स आते हैं, तो फिर इंसान ये समझ ले सोने से कुंदन बन रहा है। और हम जो है घबरा जाते हैं, और फिर लेकिन हम चाहते हैं कि हम बड़े बड़े काम करें, बड़े बड़े काम तो करना चाहते हैं, लेकिन आजमाइश ना बस कोई आए, और आजमाइश के आ जाए तो फिर दिल हार बैठते हैं और बस खत्म हो गया सब कुछ। और मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कितनी बड़ी बड़ी ट्रायल्स आई। फलबिस्ता सिनीन फी अहलि मदियन, फिर हमने तुम्हें ठहराया मदियन वालों में, कितना अरसा ठहराया, 10 साल वहां पे रहे, वहां पे अंडर ट्रेनिंग रहे, बकरियां चराते रहे, कहां महलों में पलने वाले मूसा अलैहिस्सलाम थे, देखे ना, और कहां पे फिर उधर बकरियां चराने के ऊपर आ गए। और अभी अपना वतन नहीं है, कहीं से भागे हुए, मफरूर हैं, यानी फरार हुए हैं ना वहां से, वांटेड है वहां पे, और कोई हाथ में कोई चीज नहीं, कोई ऐसा माल वगैरह नहीं है, और कहां के महल की आसाइशें थी। तो फिर 10 साल वहां पे रहे, लेकिन अल्लाह ने वहां पे जो रखा था ना, तो शुएब अलैहिस्सलाम के अंडर रखा था, वो भी पैगंबर थे, उन्होंने ट्रेन किया इनको, तो कितनी बड़ी खैर थी इसमें। बकरियां चराने से, हर पैगंबर ने बकरियां चलाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे कितना सीखा, उसे जो सबर आया, उससे जो ट्रेनिंग हुई, अल्लाह ताला सारी ट्रेनिंग कर रहा था, ऐ मूसा ये सब आपकी ट्रेनिंग हो रही थी। सुम्मा जिता अला कदरिन या मूसा, और फिर आ गया तू मूसा अला कदरिन, एक अंदाजे पर है मूसा, यानी सारे इम्तिहान पास करके जिस काम के लिए अल्लाह ने तुम्हें ये सारे ट्रायल्स में डाला, तुम उनको उसमें से पूरे उतर के कादर इन अंदाजे पर, यानी जो तकदीर में लिखा, जो राइट टाइम राइट जगह राइट वक्त में तुमने जिस जगह पहुंचना था वहां पे अब पहुंच गए मूसा, यहीं पे लिखा हुआ था कि इन सब से तुमने गुजर के यहां आना है, और वो सब से गुजार के अल्लाह ताला ने एग्जैक्ट टाइम पे तुम्हें यहां पे पहुंचाया। ये होती है तकदीर। इंसान कितने जिंदगी में मोड़ आते हैं, एक मोड़ दूसरा तीसरा, इंसान कहता है पता नहीं कहां लॉस्ट हो गया, लेकिन अल्लाह ने कहीं पहुंचाना है और उसके लिए सारी तैयारी हो रही है, और उसके बाद एग्जैक्ट वो मुकर्रर वक्त पे तूर की दाएं जानिब यहां पे आके अल्लाह से मुलाकात करनी थी। अब ये तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। वस्तनातुकल लिनफसी, और हमने मैंने तुझको बना लिया, अब जैसे कोई घड़ लेता है ना, मैं वैसा तुझे शेप कर दिया, सनत से है ना, वैसे तुझे शेप कर दिया, वैसे इन सारे टर्मोइल से गुजार के अपने काम का बना लिया। अब जब हम अल्लाह का काम करना चाहते हैं ना, तैयार उसके लिए बिल्कुल नहीं होते। हम दुनिया के कामों के लिए कितनी तैयारी करते हैं, पहले इसके लिए ये सीखना होगा, ये करना होगा, ये अल्लाह के काम के लिए भी इंसान को तैयार किया जाता है, खालिस किया जाता है, फिर अल्लाह अपना काम लेता है। अल्लाह अकबर, ये सब चीजें करके अल्लाह ने तुझे अपनी नजरों में परवान चढ़ाया, शहर से दूर मुशक्कत वाली जिंदगी में डाला, शहजादों वाली जिंदगी से निकाल के चरवाहा बनाया, और इस ऐशो इशरत से निकाल के सबर वाले काम कराए, तब तुझे अपने काम का बनाया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आगे फिर मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी चलती रहेगी, फिर इंशाअल्लाह ताला आगे देखेंगे। अभी यहीं तक और इसी को बार बार पढ़ें, अपने अपने लिए इसमें से लेसन्स निकालें, इससे सीखें। सिर्फ ये नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम के किस्सा है, कोई कुरान किस्सों की स्टोरी बुक नहीं है, कोई किस्सों की किताब नहीं है, बल्कि हर किस्से के अंदर असल में आपको कुछ बताना मकसूद है, वो चीज़ हमने निकालनी है उसमें से। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي